शादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई, दिल ना लगाया हमने किसी से किस्से सुने हैं यूं तो कई। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। कानों से मेरे होते हुए वो दिल का पता ढूंढती है। बेसुआदियों में जैसे मिल रहा हो कोई जायका। काफिराना है इश्क है या क्या है। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है या क्या है।
एक बहुत बहुत अमीर व्यक्ति ने यह सोचा कि मेरा जो बेटा है वो ये भी जाने कि वो कितना भाग्यशाली है, उसको ये भी पता चल जाए कि उसका जन्म कितने अमीर खानदान में हुआ है, और इसलिए वो ये अपने बेटे को बताना चाहता था, सिद्ध करना चाहता था, और इसलिए वो उसे खेतों में लेके गया जहाँ गरीब लोग रहते हैं, और उन गरीब लोगों के बीच वो पिता और वो बेटा कुछ दिन रहे उन खेतों में जहां पर सुख सुविधा के कोई साधन न थे, और 3-4 दिन बाद वो लोग वापस आए तो पिता ने पूछा, तुमने क्या समझा, तुमने क्या सीखा, तुमको क्या पता चला। तो वो बेटा बहुत अच्छा उत्तर देता है, वो कहता है, पिताजी हम जहां गए थे वहां और यहां में कुछ अंतर है। हमारे पास यहां एक कुत्ता है, उनके पास 4 है। हमारे पास यहां पर लाइट्स है और दिए हैं, उनके पास सितारे हैं। वो कहता है हमारे पास पॉन्ड है, तालाब, स्विमिंग पूल। उनके पास नदी बह रही है। वो कहता है हमारे पास ये आंगन है। उनके पास दूर दूर तक जिसकी थाह नहीं ऐसी खेती है। वो कहता है हम भोजन खरीदते हैं, वो लोग बनाते हैं। वो कहता है हमारे पास नौकर है, सर्वेंट्स है, और वो लोग खुद काम करते हैं। वो कहता है पिताजी हमारे पास अपनी सुरक्षा के लिए ये दीवारें हैं घर की, और उनके पास उनकी सुरक्षा के लिए उनके दोस्त हैं। इसलिए फादर आई हैव अंडरस्टूड हाउ पुअर वी आर एंड हाउ रिच दे आर। अब मुझे समझ में आया कि हम कितने गरीब हैं और वो कितने अमीर। पिता का लक्ष्य था कि उसको ये पता चल जाए कि हम कितने अमीर हैं और वो कितने गरीब हैं। परंतु जो उत्तर वो बेटा देता है, वो देकर, वो सुनकर पिता एकदम अवाक, सरप्राइज्ड। और वास्तव में खुशी, सुख, आनंद बाहर की किसी वस्तुओं में नहीं है, बाहर की सुख सुविधाओं में नहीं है। खुशी आंतरिक स्थिति है, संतुष्टता का भाव संस्कार है। सब कुछ मिलने के बाद भी व्यक्ति अतृप्त रहता है यदि संस्कार ही डिससैटिस्फैक्शन का है। और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, अभाव से भरपूर परिस्थितियों में भी व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है, तो सबसे बड़ा भाग्य, जिसे संसार भाग्य कहता है, वो नहीं है। सुबह की अव्यक्त वाणी। बाबा ने कहा सारे दुनिया की, विश्व की जन्मपत्री देख लो, सारे विश्व की जन्मपत्री देख लो, चाहे कोई कितना भी संपत्तिवान है पर तुम जैसा भाग्य नहीं, चाहे किसके पास शास्त्रों का ज्ञान है पर तुम जैसा भाग्य नहीं, चाहे किसी के पास विज्ञान का बड़े से बड़ा ज्ञान है पर तुम जैसा संपत्तिवान नहीं। इस संसार में तुम सबसे अधिक भाग्यशाली हो। क्यों? ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही है इत्र से हवा। कौन मिला है? स्वयं भाग्य विधाता मिला है। उसकी बोली खामोशियों में कानों से ऐसे उतर रही है और दिल का पता ढूंढ रही है बेस्वादियों में। जो बेस्वाद था दिल, बेमजा, फीका, जैसे उसमें मिल रहा है कोई जायका, कोई स्पाइस, कोई टेस्ट, ऐसे तुम मिले हो। यकीन नहीं आता इश्क है ये, कैसा कैसा प्यार है ये, कैसी मोहब्बत है ये, काफिराना। इस्लाम में काफिर शब्द होता है, काफिर अर्थात जो कुफ्र करते हैं, कुफ्र अर्थात जो डिसबिलीवर है, जो मानते नहीं एक खुदा को, एक परमात्मा को, उसको वो लोग कुफ्र करने वाले कहते हैं, डिसबिलीवर। ये इश्क भी अनबिलीवेबल है, काफिराना, बिलीव नहीं हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है, विश्वास नहीं हो रहा, अविश्वसनीय है कि स्वयं भाग्य विधाता मिल गया, स्वयं भगवान मिल गया। तो हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। जो विश्व के दूर दूर कोनों में भगवान के बिछड़े हुए बच्चे थे, वो फिर आकर मिल गए। और हर एक के मिलने की कहानी अपनी अपनी कहानी है, और कैसे भगवान को जान लिया और पहचान लिया और मान लिया और अपना बना लिया। भाग्य, यह भाग्य है। तो आज की जो अव्यक्तवाणी सबने सुनी, बहुत सारी बातें हैं इसमें। मुरली चली है 9 जनवरी 1985, जिसमें भाभा ने हमारे भाग्य का वर्णन किया और जिसमें मधुबन निवासियों से मुलाकात की और नए वर्ष की प्लानिंग थी। तो ये समझना है आज तक जो कुछ हुआ, पुराना वर्ष था और आज ये दिन, आज का दिन जैसे नया वर्ष है, जैसे नई शुरुआत है, द न्यू बिगिनिंग्स। इसके लिए जीवन में आज तक जो कुछ हुआ, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, और जो जो मुरली में आज कहा बाबा ने, उसको हम रिवाइज करेंगे और जो बातें उसमें आई है उसको अपने अंदर धारण करेंगे। तो इस मुरली में भगवान ने भाग्य का वर्णन किया है। पहले आप बताएंगे क्या क्या कहा मुरली में, फिर हम चालू करेंगे। तो क्या क्या कहा बाबा ने आज? तुम श्रेष्ठ भाग्यवान हो, और तुम न्यारे और प्यारे, और रॉयल, और भोलेनाथ के भोले बच्चे, और अधिकारी, और हम अंदर भरपूर है और बाहर साधारण है, और वो लोग बाहर से भरपूर है अंदर से खाली। किसी एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था, ये संसार इस समय खोखा बन गया है। खोखा अर्थात जिसमें अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी बॉक्स, केवल दिखावा मात्र है, केवल चमक दमक है ऊपर से, अंदर से हर आत्मा दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन में है। ऊपर से केवल दिखावा है, महल माड़िया है, साधन है, सुख है, सुविधाएं है, कंफर्ट्स है, कन्वीनियंस है, परंतु चेतना अंदर से खाली है, बहुत दुखी है, क्योंकि आत्मा की प्यास सुख, अतींद्रिय सुख की है। शरीर का कोई भी सुख कभी भी उसे तृप्त नहीं कर सकता। हम हमेशा कहते हैं आत्मा अनंत है, और अनंत की प्यास केवल और केवल अनंत ही बुझा सकता है। द सोल इज इन्फिनिट एंड एनीथिंग दैट इज फाइनाइट कैनॉट सेटिस्फाई द इन्फिनिट। इसको केवल और केवल परमात्मा मिलन ही बुझा सकता है ये प्यास, और कुछ भी इसे तृप्त नहीं कर सकता। संसार का कोई संबंध इसे तृप्त नहीं कर सकता, संसार की कोई प्राप्ति इसे तृप्त नहीं कर सकती, संसार का कोई व्यक्ति हमें सुखी नहीं कर सकता, कोई संबंध सुखी नहीं कर सकता, संसार की कोई संपत्ति, किसी की मदद, किसी का प्यार कभी भी तृप्त नहीं करता। आत्मा को तृप्त केवल परमात्मा ही कर सकता है। और क्या कहा बाबा ने? अल्लाह लोक दुनिया वालों को दिखाई दे, और क्या कहा? मधुर और महान, मधुबन निवासी अर्थात जिनके बोल में 5 विशेषताएं हैं। पहला, हर बोल मोती है, बोले तो ऐसा लगे जैसे मोतियों की वर्षा हो रही है। कल जब हम एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट पर एक जगह लिखा हुआ था, Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Come you all to the people of Oman, and they will never insult or abuse you. ये वो लोग हैं जो तुम्हारा कभी अपमान नहीं करेंगे, ना ही तुम्हें कभी गाली देंगे, ऐसा वहाँ एयरपोर्ट पर लिखा हुआ था एक जगह। तो मधुबन निवासियों के बोल कैसे हैं? मधुर। सबसे पहली विशेषता बोल में क्या है? मोती है। दूसरी विशेषता बोल कैसे हैं? सुनकर औरों को लगे हम ऐसा बोले, हम इनके जैसा सीखे और इनको फॉलो करें, ये दूसरी। तीसरा टेप करने जैसे हो, टेप करके रिकॉर्ड करके बार बार सुनने जैसे लगे, ये तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता हर बोल महान हो, ये पांचवी है। चौथी विशेषता और कैसे हो बोल, अभी अभी सुनी है सबने मुरली, सत्यता। और हाँ, वाइब्रेशन सारे विश्व में फैले, ये चौथी विशेषता बोल की। और पांचवी विशेषता हर बोल महान हो। तो जब हम बोले तब क्या हो? मोतियों की वर्षा, इसको कहते हैं मधुरता। मधुवन दो शब्द है उसमें। तो ये पांचों पॉइंट्स अपने डायरी में नोट करके रखने सारे दिन भर के लिए, आज से इन फ्यूचर हमारे मुख से कोई अपशब्द ना निकले, 5 पॉइंट चेकिंग करनी है, वर्ड्स की, स्पीच की, वाणी की, वाचा की। पहला, जब हम बोले तो मोती। दूसरा, जब हम बोले तो, जब हम बोले तो दूसरा क्या बताया अभी, बताया यहां पे किसी ने? दूसरों को लगे कि हम भी ऐसा बोले, प्रेरणादायक बोल, दूसरों को लगे कि हम भी इनसे सीखे, इनको फॉलो करें, ये दूसरी विशेषता। इंस्पायरिंग स्पीच। तीसरी विशेषता टेप करने जैसे। और यदि हमें यह पता है कि कोई टेप कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो विल वी एवर अब्यूज, विल वी एवर इंसल्ट एनीबडी? क्या हम किसी का अपमान करेंगे, किसी की ग्लानी, किसी की निंदा, किसी पर कमेंट्स, किसी पर टॉन्ट, किसी का अपमान, किसी को दुख, किसी को दर्द, किसी को पीड़ा, जानबूझकर दुखाना किसी का दिल क्योंकि वर्ड्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, और रिकॉर्ड हो रहे हैं हमको पता है, तो वो हम बहुत ध्यान से करेंगे। जैसे बाबा ने स्टेज के लिए कहा, स्टेज पर कितने लोग होते हैं? टेल मी एवरीबडी हु इज ऑन द स्टेज, कौन कौन लोग होते? एक तो चीफ गेस्ट, स्पीकर, एंकर, डांसर, साउंड पीपल, माइक लगाने वाले, उसके बाद में सिंगर, इफ एट ऑल सिंग करता है कोई गीत, फिर स्टेज की सजावट वाले, में से 7 लोग होते हैं। और इन में से कोई भी स्टेज पर आता है तो पहले अपने आप को थोड़ा सा ठीक करता है, माइक रखने का काम है, ज्यादा काम नहीं, पर फिर भी वो ध्यान रखता है कि मैं ठीक से जाऊं, लोग मुझे देखेंगे। सजावट रख करने वाले स्टेज की, स्टेज का अरेंजमेंट करने वाले, वो भी ध्यान रखते हैं अगर स्टेज पे जाते हैं तो। हम सब भी स्टेज पर है, हम सब भी विश्व की स्टेज पर है, हर समय संसार की सभी आत्माएं मुझे देख रही है, इसलिए मेरे बोल कैसे हो? सबसे पहली बात बोल की मोती, दूसरी बात बोल की प्रेरणादायक, तीसरी बात बोल की रिकॉर्ड हो रहे हैं इसलिए एक्स्ट्रा अटेंशन, चौथी बात बोल की इस बोल के वाइब्रेशंस कहां जा रहे हैं? विश्व में फैल रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में सुना है किसी ने? आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो भी कुछ कहा जाता है ऐसा कहते हैं कि आकाश में रहता है। हिटलर ने क्या कहा था, गांधी ने क्या कहा था, सिकंदर ने क्या कहा था, मुसोलिनी ने क्या कहा था, वो सब आकाश में है। मोहम्मद घोरी ने क्या कहा था, सब कुछ कहा जाता है, नथिंग इज डिस्ट्रॉयड, दे स्टे इन द एटमोस्फियर एंड दे मेंटेन द रिकॉर्ड, सो दे आर नोन एज आकाशिक रिकॉर्ड्स। अगर कोई चाहे तो उन शब्दों को सुन सकता है, अगर कोई चाहे तो यहां बैठकर शेक्सपियर ने क्या कहा था, अगर बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाए तो वो आवाज भी सुनाई दे सकती है। इसके लिए हमारे शब्द के वाइब्रेशंस कहां जा रहे हैं, विश्व में। और पांचवा, हर बोल महान। अभी फिर से आते हैं भाग्य के लिए क्या क्या कहा, वो हमारा प्रश्न था। यहां हम थोड़े से डाइवर्ट हो गए थे। मुरली में भाग्य के लिए क्या क्या कहा, ये रूहानी रॉयल्टी और अविनाशी और दिल शिकस क्या, सदा सुकून, और सुकून शब्द मुरली में है, भरपूर और अमूल्य हीरा और श्रेष्ठ और अनोखी क्या है, भाग्य, चमकता सितारा और अधिकारी आत्माएं। तो इस मुरली में भाग्य के लिए 10 बातें कही है, दैट वी विल रिवाइज वर्ड बाय वर्ड। सबसे पहली बात, बाबा क्या देख रहे हैं, भाग्य की लकीर। भाग्य की तुलना लकीर से की गई है। भाग्य फॉर्च्यून अलग अलग चीजों से कंपेयर किया गया है संसार में। सबसे पहला कंपैरिजन मुरली को छोड़ दो, लकीर। दूसरा कलम, कहते हैं भाग्य की लकीर लंबी, भाग्य की कलम, कलम से किया गया। तीसरा भाग्य का सूर्य, चौथा भाग्य का सितारा चमक रहा है, पांचवा भाग्य का तिलक, तिलक, भाग्य का सुहाग, भाग्य का द्वार, भाग्य का चक्र। भाग्य को चक्र के साथ, भाग्य को द्वार के साथ, भाग्य को तिलक के साथ, भाग्य को सुहाग के साथ, भाग्य को सितारे के साथ, भाग्य को सूर्य के साथ, भाग्य को कलम के साथ और भाग्य को लकीर के साथ, 10 कंपैरिजंस। जब भी भाग्य की बात आती है तो कंपैरिजन से करते हैं। जैसे किसी का भाग्य बहुत ज्यादा अच्छा है तो कहते हैं भाग्य की लकीर लंबी है, या भाग्य का सितारा चमक रहा है, या भाग्य का सूर्य उदय है, या भाग्य का द्वार खुल गया है, भाग्य का तिलक, भाग्य का सुहाग। सो फॉर्च्यून निराकार वस्तु है, पर उसको समझने के लिए अलंकारिक फिगरेटिव लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। अध्यात्म के सिद्धांत आर फॉर्मलेस, इनकॉर्पोरियल, दिखाई नहीं देते। भाग्य हाउ टू अंडरस्टैंड, इसलिए कंपेयर कहां से किया जाता है, संसार की वस्तुओं के साथ, टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल। नहीं तो सारा अध्यात्म जो है इट्स अ कंपैरिजन, क्योंकि हम लोग जो इस धरती पर रहते हैं, वी डोंट अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट, वी नीड रिलेटिव। इसके लिए भगवान निराकार है, वो अपना पॉइंट समझाने के लिए संसार का एक उदाहरण लेता है, खूंटी बनाता है और अपनी पॉइंट उसके ऊपर टंगाता है। अगर वो ये कहते तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है, फिनिश, But he will use the word sitara chamak raha hai. Shakespeare ka ek patra. Midsummer Night Dreams ka kehta hai. And as poet's pen bodies forth forms of imagination, the poet's pen turns them to shape, which is airy nothing, and gives to airy nothing a local habitation and name. Kavi jo hota hai, kya karta hai? Uski kalpana ke aadhar par, jo airy nothing hai, kuch bhi nahi hai, usko gives a local habitation and name. Usko naam deta hai ek. जो कि निराकार है, जो कि समझ में नहीं आता है. वैसे ही भाग्य कहा तो कुछ समझ में नहीं आता है, परंतु फिर कहता है भाग्य का सितारा, तो फिर चमक रहा है, अर्थात इट्स डिफरेंट. तो इस मुरली में सबसे पहली पॉइंट आज की मुरली से, आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट भाग्य की तुलना की है लकीर के साथ. हम आत्माओं का भाग्य कैसा है, लकीर कैसी है, लंबी और श्रेष्ठ और अविनाशी. अर्थात व्हाट, लकीर कैसी है, श्रेष्ठ है और अविनाशी है, और ये अविनाशी ही रहे और ये श्रेष्ठ ही रहे, अखंड रहे, अनडिवाइडेड. यदि इस ब्राह्मण जीवन से हम गिरते हैं तो ये लकीर कम हो जाएगी. बाबा ने कहा ये तुम्हारी लकीर श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ और अविनाशी है. अगर इस लकीर को यदि हमने ब्राह्मण जीवन के नियम और ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं को तोड़ा, या भगवान को छोड़ दिया, या जो जो धारणाएं यहां पर है उनको तोड़ा, तो ये लकीर खुंट जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. और भगवान कह रहे हैं तुम्हारे भाग्य की लकीर लंबी है, अविनाशी है, श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ ही रहे. इसलिए इस ब्राह्मण परिवार में जो नियम है, जो मर्यादाएं हैं, बहुत सूक्ष्मता से उनका पालन करना है. ब्राह्मण दिनचर्या में 7-8 बातें हैं, वो सारी होती रहे, उसको सभी नोट करके रखना है. सबसे पहली बात है अमृत वेला. यदि अमृत वेला रोज 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 मिस हो रहा है, देर से उठ रहे, इनकंसिस्टेंट है, कभी है कभी नहीं है, या साधारण है, कभी उठ रहे कभी नहीं उठ रहे, तो ये जो लकीर है कम हो जाएगी, खुशी नहीं मिलेगी. चाहे कहीं पर भी रहो विश्व के किसी भी कोने में, परंतु अमृत वेला शक्तिशाली हो. कुछ दिन पहले मुरली में था सन्नाटा छा जाए, योग का सन्नाटा, डीप साइलेंस. हम देखते हैं मधुबन पांडव भवन में सुबह सुबह सन्नाटा, साइलेंस, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, कुटिया, मेडिटेशन हॉल, चार्ज हो जाता है वातावरण, पावरफुल हो जाता है. इसलिए अमृत वेला यहां करते हुए, यहां से उड़कर मधुबन के चार धाम की यात्रा करनी है रोज 24 आवर्स वंस. क्या करना है, मधुबन ट्रैवल. तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, डायरी बंद, अभी अभी हम मधुबन होकर आएंगे. और ये मधुबन जाना हर दिन एक बार या दो बार, सुबह अमृत वेला और शाम को ट्रैवल, 4 पिलग्रिमेज साइट्स. बॉडी रिलैक्स. दोनों पैर शिथिल. चैतन्य ज्योतिर्मय आत्मा, मैं शांत स्वरूप हूं. वायुमंडल शांत. स्थूल देह को यहीं छोड़, मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर आकाश में मैं फरिश्ता हूं. उड़कर समंदर को पार करते हुए पहुंच रहा हूं भारत भूमि पर. अरावली पर्वत श्रृंखला आबू की पहाड़ियां आकाश में मैं आबू पर्वतों के ऊपर से गुजरता मैं नीचे उतर रहा. मधुबन पांडव भवन का आंगन परमात्मा उत्तरण भूमि परिवर्तन भूमि संसार का सबसे महान तीर्थ शांति स्तंभ के समीप श्वेत शांति स्तंभ मैं खड़ा हूं. शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही है. शांति स्तंभ की परिक्रमा अब हिस्ट्री हॉल सभी पूर्वजों का वरदानी हस्त मेरे सिर पर, मम्मा और बाबा दृष्टि देते हुए व्यर्थ से मुक्ति, बाबा का कमरा बाप समान बनने का संकल्प, बाबा की कुटिया यदि उदास हो जाओ तो बाप से रू रिहान करने कुटिया में आ जाना। अब मैं फरिश्ता मधुबन के आंगन में मधुबन की रूहानी खुशबू मुझ में समा गई, भाग्य की लकीर श्रेष्ठ और अविनाशी, मैं फरिश्ता वापस आकाश में आबू पर्वतों के बीच वापस समुद्र के ऊपर उड़ता हुआ धीरे धीरे अपने स्थूल देह में प्रवेश। मैं फरिश्ता हूं, मेरा हर बोल मोती है, हर शब्द प्रेरणा स्रोत है, हर शब्द रिकॉर्ड करने योग्य है, शब्दों के वाइब्रेशंस विश्व में फैल रहे हैं, हर बोल महान, एक बोल में एक शब्दों में सौ शब्दों के वाइब्रेशंस। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, शांति। तो 24 घंटे में कितनी बार मधुबन जाना है? कम से कम 2 बार, एक अमृत वेला और एक नुमाशाम। जाना, 4 धाम का चक्र लगाना, वापस आ जाना। किसी ने कहा है, बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड, बॉडी इज लाइक द सबकॉन्शियस माइंड। बॉडी में जो चेंजेस वास्तविक अनुभव से होते हैं, बॉडी में जो चेंजेस वास्तविक अनुभव से होते हैं, वही चेंजेस थिंकिंग से भी लाए जा सकते हैं। अर्थात इमेजिनेशन से, अर्थात विजुअलाइजेशन से। शरीर वास्तव में अनुभव करे एक परिस्थिति और उसमें कुछ चेंजेस, दूसरा केवल विचार में वो अनुभव किया जाए, सेम चेंजेस इन द बॉडी। चाहे आध्यात्मिक अनुभव या विकार, बोथ। अगर कोई ये देखे रात के समय मैं चोरी करने जा रहा हूं, इमेजिनेशन, ओनली इमेजिनेशन, और मैं चोरी कर रहा हूं और डर है कि कोई देख ना ले, ओनली इमेजिनेशन, इधर अपने आप पाल्पिटेशन होगा, हार्ट रेट इधर बढ़ जाएगा, कर नहीं रहे, केवल इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, आइंस्टाइन ने कहा है। केवल सोच रहे हैं, वो ज्ञान से भी शक्तिशाली है। तो सबसे पहली पॉइंट बताइए, लकीर कैसी है? श्रेष्ठ है और अविनाशी है। उसमें हम बात कर रहे थे दिनचर्या की, और दिनचर्या में सबसे पहली बात बताई अमृत वेला, दूसरी बात मुरली की स्टडी। मुरली सुनना नहीं, केवल स्टडी, चिंतन, मनन। तीसरी बात, इसको हम विस्तार से और लेंगे आगे, तीसरी बात ट्रैफिक कंट्रोल, फूड, भोजन। जो भोजन बना रहे, खा रहे, याद में खा रहे, याद में बना रहे, या जिन पैसों से भोजन आ रहा है वो पैसा कितना शुद्ध है। इफ इट इज नॉट प्योर मनी, इट विल नॉट क्रिएट प्योर थॉट्स। इसके लिए जो पैसा हम अर्न कर रहे हैं, दैट शुड बी बाय द स्वेट ऑफ थाई ब्रो, सच्चाई का पैसा हो। उसमें यदि झूठ है तो ऐसा पैसा कभी भी ब्राह्मण जीवन में आगे नहीं बढ़ाएगा, रुक जाएंगे कहीं ना कहीं। थर्ड फूड, फोर्थ ट्रैफिक कंट्रोल। दिनचर्या में अपना ट्रैफिक कंट्रोल कुछ तो बने हुए हैं, पर जो ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, ट्रैवल में रहते हैं, ट्रैफिक को अपने आप कंट्रोल करना है, मन के ट्रैफिक को, इन बिटवीन रूहानी ड्रिल। अभी हमने कुछ समय से मधुबन में रूहानी ड्रिल का अभ्यास चालू किया है, 7 हो गई है शायद, 36 ड्रिल्स है जो बाप दादा ने कराई है। तो उसको सारे दिन भर अभ्यास, हर दिन एक एक, 7 हो गई है, 36 है, पहले बाबा की आवाज, फिर उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन, और फिर सारे दिन भर में एक एक घंटे में ड्रिल करना। दिस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू रिमेन स्टेबल, ड्रिल। तो ट्रैफिक कंट्रोल, फोर्थ। फिफ्थ, कर्मयोग। सारे दिन भर में कर्म करते करते ओनली कर्म कॉन्शियस नहीं हो जाना है, एक्शन कॉन्शियस, सर्विस कॉन्शियस और वर्कोहलिक। केवल काम कर रहे, काम कर रहे, काम कर रहे, भगवान भूल गया, ये ना कर्म में उसकी याद जुड़ी हो कोई ना कोई रूप से, कि हम ये कर रहे हैं भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए, या फिर लौकिक जॉब है, ये सोचना ये लौकिक जॉब अलौकिक को प्रत्यक्ष करने के लिए है। लौकिक जॉब करते हुए भी यही समझना है कि लौकिक है, जैसे बाबा ने कहा, साधारण बाहर से अंदर से महान। कौन है, क्या है, लोग पूछे, अल्लाह लोक है, अनोखे लोग हैं। तो लौकिक में भी अलौकिक को ढूंढना, अलौकिक को प्रत्यक्ष करना। उसके बाद है अगला नुमा शाम का योग, इवनिंग योगा। जैसे अमृत वेले की तरफ ध्यान है, वैसे इवनिंग योगा की तरफ भी ध्यान हो। 6:30 to 7:30 नॉट पॉसिबल, 7 to 7:30 नॉट पॉसिबल, क्योंकि कर्म कर रहे, काम कर रहे, जॉब कर रहे, ट्रैवल में है, जहां पर भी है, उस समय एटलीस्ट फॉर सम टाइम डिटैच फ्रॉम द एनवायरमेंट। और बाबा से कर्म करते हुए भी, अगर जो लोग बिजी है वो, बाकी लोग बिजी नहीं है वो चुपचाप आके बैठ जाए घर में, हैव अ स्मॉल मैट, उसको बिछाओ, और बाबा का कमरा है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो एक ट्रांसलाइट, वो भी नहीं है एक पॉइंट ऑफ लाइट का चित्र, वो भी नहीं है विदाउट दैट, आधा घंटा तो बैठना है इवनिंग, उसके बाद में मुरली डिस्कशन, नेक्स्ट पॉइंट है मुरली डिस्कशन, दिस इज द लाइफ स्टाइल ऑफ ब्राह्मिन, उसमें ये सारी बातें आनी चाहिए। रात में सोने से पहले थोड़ी सी मुरली डिस्कशन होना चाहिए, किसके साथ करें, अगर घर वाले ज्ञान में है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो फोन पे, वो भी पॉसिबल नहीं है अपने आप से, वो भी पॉसिबल नहीं है, कोई बच्चा है छोटा सा उसी को मुरली सुनाओ या पॉइंट सुनाओ, वो भी पॉसिबल नहीं है तो बाबा को सुनाओ कि बाबा तुमने ये कहा आज, अच्छी कहा, गुड पॉइंट्स, यू हैव डन अ गुड जॉब, यू हैव डन अ गुड जॉब, कीप ऑन, कीप इट अप, तो उसका उसी को सुनाओ। तो डिस्कशन एंड लास्ट चार्ट। चार्ट दो प्रकार से होता है, एक तो लिख के या एक मौखिक, ओरल और रिटन। बिफोर स्लीपिंग गिव द चार्ट, बाबा को बताना ये हुआ। फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसकी किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसमें उसने लिखा इन 17th सेंचुरी, वो रात को सोते समय अपना चार्ट लिखता था, 13 पॉइंट्स थे उसके, बेंजामिन फ्रैंकलिन के, वॉज आई मॉडरेट इन डाइट, डिड आई प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, यस, वॉज आई कोर्टियस, डिड आई प्रैक्टिस ट्रूथ, क्या मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला, किसी को दुख तो नहीं दिया, डाइट कंट्रोल था, उसको भगवान नहीं मिला था, ही वॉज नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन, बट चार्ट लिखता था सोते समय, यू कैन गेट दैट चार्ट फ्रॉम इंटरनेट। सेल्फ चेकिंग। सो कितनी बातें हो गई, फर्स्ट अमृत वेला, सेकेंड मुरली, थर्ड ट्रैफिक कंट्रोल, थर्ड फूड, फोर्थ ट्रैफिक कंट्रोल, फिफ्थ कर्म योगा, सिक्स्थ इवनिंग योगा, सेवेंथ मुरली डिस्कशन एंड सेवेंथ एट्थ चार्ट। ये सारी चीजें होनी चाहिए, इनमें से एक भी कम तो फर्स्ट पॉइंट गॉन, लकीर अविनाशी और श्रेष्ठ है, बाबा ने कहा भाग्य की। दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट फ्रॉम द मुरली, भाग्य की झलक और फलक, सबको कैसी अनुभव हो, न्यारी है, श्रेष्ठ है, अविनाशी है, अलौकिक है, हमारी ये जो झलक और फलक है, नहीं सॉरी, सेकेंड इज जन्म सिद्ध अधिकार, दैट इज थर्ड, जन्म सिद्ध अधिकार है, भाग्य क्या है हमारा, जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट। यहां पर बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे कोई संपत्तिवान होता है, रिच पर्सन, उसको नशा होता है अपना, तो हमको भी नशा हो कि हमको क्या मिला है, कौन मिला है, नहीं तो जीवन में बेस्वादियों में, बेस्वाद, बेमजा, टेस्टलेसनेस में डूबे हुए थे। भगवान का मिलना अर्थात जायका, कोई स्वाद उसमें आ गया, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही है इत्र से हवा, सुगंध आ गई है जीवन में उसके मिलने से, तो ये भाग्य क्या है हमारा, बर्थ राइट है, इसके लिए इसका क्या होना चाहिए, नशा, और नशा होने के लिए पांच चीजें चाहिए, इफ यू ड्रिंक एनीथिंग ड्रिंक्स, नशा कब चढ़ता है, नशा कब चढ़ता है, दारू पीता है कोई व्यक्ति तो नशा कब चढ़ता है, हाँ, पीने के बाद तो चढ़ता है, पर कब? उसमें पांच चीजें चाहिए। फर्स्ट, डोज ज्यादा चाहिए। इतना सा पी लिया तो नशा चढ़ता है क्या? फुल चाहिए। फर्स्ट इज डोज, बहुत पीना पड़ता है तब कहीं नशा। नशा मतलब यू शुड नॉट बी एबल टू वॉक, ऐसे गिरना चाहिए, लड़खड़ाते कदम, आंखें लाल, और सिर वो टेबल पर रख देते हैं पीते पीते। दिस आर द साइंस। यहां कहीं गिर जाता है, कोई गटर में गिरता है, कोई कहां गिरता है, और लैंग्वेज बदल जाती है, अब्यूजिव हो जाते हैं, एजिटेटेड हो जाते हैं, आवाज बदल जाती है, और इररिलेवेंट टॉक्स। कोई अगर पी के आए और कहे मैं पी के हूं तो यू विल नॉट बिलीव। ऐसा थोड़ी होता है, पी के मतलब एकदम ड्रंकर्ड, प्रॉपर ड्रंकर्ड। सो फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड इज डोज शुड बी मोर। दूसरा, एक बार पी लिया सुबह, दिन भर रहता है क्या? बार बार पीना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू कीप ऑन ड्रिंकिंग। बार 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 पीते रहो तो फ्रीक्वेंसी। सेकंड, थर्ड, नीड सॉल्यूशन चाहिए। डाइल्यूट कर दिया उसमें तो नशा चढ़ेगा? इतना वाइन लिया और उसमें बहुत सारा पानी भर दिया, नशा थोड़ी चढ़ता है। डाइल्यूटेड थिंग्स नीट, इसको कहते हैं नीट सॉल्यूशन। तीसरा, चौथा, उसके साथ में दारू भी पी रहे हैं और फिर जूस भी पी रहे हैं, लिमका भी पी रहे हैं, नथिंग शुड बी मिक्स्ड, केवल प्योर वाइन, तब कहीं नशा चढ़ता है। और पांचवा, नशा तब चढ़ता है जब दोस्तों की महफिल हो। तीन चार ड्रंकर्ड्स शुड बी टुगेदर, चीयर्स, तब नशा चढ़ता है। तो हम लोग स्पिरिचुअल ड्रंकर्ड्स है, रूहानी पियक्कड़। तो यहां पर भी नशा, बाबा ने कहा नशा हो जाए तुमको भाग्य का, भाग्य जन्म सिद्ध अधिकार है। तो नशे के लिए पांच चीजें चाहिए। सुबह मुरली पढ़ लिया, काम पूरा हुआ, थोड़ा सा पढ़ लिया, डोज सबसे पहली चीज है, डोज को बढ़ाओ। नशा क्यों नहीं है जीवन का, डोज ही कम है। खाली मुरली सुन लिया और सारे दिन भर में काम लौकिक, उसमें डूब गए तो कहां से चढ़ेगा? स्पिरिचुअल स्टडीज बार बार होती रहे, ट्रैवल कर रहे, लिसन सम क्लास, यू हैव टाइम, वेट कर रहे, लिसन समथिंग, बाबा की मुरली, बाबा की वाणी, किसी का क्लास, दादियों की क्लास, बुद्धि में ज्ञान कुंजता रहे, चिंतन चालू रहे, चर्निंग ऑल द टाइम। तो फर्स्ट इज डोज, सेकेंड फ्रिक्वेंसी, बार 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 बार, सुबह फुल डोज ले लेना। अच्छा, अमृत वेले के बाद, अमृत वेले के बाद ज्ञान का फुल, थोड़े से काम नहीं चलेगा। और दिन भर में भी थोड़ा 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 लेते रहना, लेते रहना, लेते रहना। नहीं तो सुबह अमृत वेला किया बहुत अच्छा, मुरली किया बहुत अच्छा, सारे दिन भर विस्मृति, और फिर शाम को एकदम से याद, कहाँ है बाबा? बाबा भी है, वो शाम को याद आता है, क्योंकि दिनचर्या में हजार चीजें है, हलचल है, डिस्टर्बेंस है, अज्ञानी लोग है, बाहर का वायुमंडल है, विकार है, रावण राज्य है, कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत अच्छी स्थिति रह जाए। इसके लिए डोज बीच बीच में लेते रहना, फ्रीक्वेंसी सेकंड, थर्ड नीड सॉल्यूशन। ये भी पढ़ रहे हैं, फिर मोबाइल भी देख रहे हैं, फिर व्हाट्सएप भी चेक हो रहा है, मिक्स हो रहा है, नीट सॉल्यूशन नहीं है। इधर का भी पढ़ रहे, उधर का भी पढ़ रहे, ये भी पढ़ रहे, वो भी पढ़ रहे, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे, ये भी पढ़ रहे, मिक्स, या इसमें डाला जा रहा है, मन मत, दैट इज नीट सॉल्यूशन चाहिए। फोर्थ, नथिंग शुड बी मिक्स्ड अलोंग विथ इट। इसमें भी वही सारी चीजें आएगी, ये भी पढ़ रहे और वो भी पढ़ रहे, पहले इसमें आएगा, उसमें कुछ अपनी मन मत मिक्स कर रहे हैं, इट इज नॉट नीट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। सेकेंड, दूसरी चीजें उसके साथ ले रहे, साथ 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 साथ, टीवी भी देख रहे हैं, सीरियल भी देख रहे हैं, मुरली भी पढ़ रहे हैं। सीरियल्स का भी बहुत एडिक्शन है, एडिक्शन, टीवी, सीरियल, मीडिया एडिक्टिव है, न्यूज एडिक्टिव है, एक बार पढ़ लिया आगे क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट, और एक सीरियल यदि मिक्स हो गया, एक एपिसोड यदि मिस हो गया, बेचैनी। संसार की बात है ये सब। लास्ट कंपनी एक है घर पे बैठ के मुरली पढ़ना, एक है सेंटर पर आना। क्या अंतर है? मुरली तो मिलती है सब जगह, ऑनलाइन एवरीथिंग अवेलेबल, पर यहां आना अर्थात इस वायुमंडल में आना। यहां केवल मुरली सुनने आने का यह लक्ष्य नहीं है, यहां आना अर्थात इस वातावरण में आना, इन दीवारों के अंदर आना। यहां शक्तिशाली वायुमंडल है। जरूरी नहीं कि हर दिन कोई नई बात पता चले, पर नया अनुभव जरूर हो सकता है बैठे बैठे। तो ये पांच बातें। तो दूसरी पॉइंट थी जन्मसिद्ध अधिकार। थर्ड पॉइंट झलक और फलक। बाबा ने कहा तुम्हारी झलक और फलक देखकर उनको लगे ये न्यारे लोग हैं, अलौकिक लोग हैं, अनोखे हैं। हमारी झलक और फलक, झलक फलक ग्लिम्स जिसको कहेंगे, उनको अनुभव हो कि दे आर डिफरेंट पीपल, दे आर नॉट ऑर्डिनरी, दे आर डिफरेंट, दे आर डिटैच्ड। वो हमारे जैसे नहीं है ऐसा उनको लगे। जैसे कोई एक व्यक्ति है किसी कंपनी में काम करता है और वो बीके है, जितने लोग वहां काम करते हैं 100 लोग वहां काम करते हैं, कोई भी ज्ञान में नहीं है, ये एक ही व्यक्ति ज्ञान में है और उनको कुछ पता भी नहीं, या थोड़ों को पता है, थोड़ों को थोड़ा पता है, पर इतना जरूर उनको लगे कि ये जो व्यक्ति है ये अलग है हमसे, ही इज डिफरेंट, कुछ तो है इनमें विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अस। ऐसा अनुभव हो, और वैसे के लिए श्रेष्ठ चिंतन चाहिए, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, वो सारी चीजें चाहिए, श्रेष्ठ दिनचर्या चाहिए, विचार, पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स, इनसाइट, तो ही ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर वो जा रहे पार्टी में, हम भी जा रहे, वॉट एवर जोक्स वो लोग कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, वो लोग न्यूज की चर्चा कर रहे हैं हम भी चर्चा कर रहे हैं, वो लोग पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहे हैं हम भी पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? हम में और उनमें अंतर हो, ये तीसरी बात। चौथी पॉइंट, बाबा ने कहा ये जो भाग्य है, ये प्रॉपर्टी, ये पर्सनैलिटी, इससे तुम भरपूर हो। ये जो भाग्य है, इस भाग्य की प्रॉपर्टी से तुम आत्माएं कैसी हो? भरपूर हो। जैसे वो आत्माएं होती है उनके पास प्रॉपर्टी होती है और वो लोग भरपूर होते हैं, क्या ये हमने समझा है ये भाग्य भी एक प्रॉपर्टी है? ये हम डाउटफुल है। जैसे एक व्यक्ति होता है फिलोसोफर, वो भाग भाग के बस स्टेशन पर पहुंचता है, बस स्टेशन पर उसको एक मशीन दिखती है जिस पे लिखा होता है फॉर्च्यून टेलर, और उसमें लिखा होता है पुट $1, तो आपको अपना फॉर्च्यून पता चलेगा। तो फटाफट वो देखता है, ही इज फिलोसोफर थिंकर, $1 डालता है, उधर से आवाज आती है यू आर मिस्टर जॉन, आप एक फिलोसोफर हो, आपकी उम्र 65 है एंड यू आर गोइंग टू शिकागो। बोलता है अरे वाह, ये तो एकदम सही बोल रहा है, बट वो डाउट करता है, फिर से एक कॉइन डालता है देखने के लिए कि सही है या नहीं। उधर से आवाज आती है यू आर मिस्टर जॉन 65 ईयर ओल्ड, यू आर फिलोसोफर, यू आर गोइंग टू शिकागो। बोलता है अरे वाह, ये तो सही में सही बोलता है, परंतु उसको लगता है मैं एक बार फिर से देखू, आई वॉन्ट टू टेस्ट इट वंस मोर। फॉर्चून मशीन है, भाग्य की मशीन है, तीसरा डॉलर डालता है, उधर से आवाज आती है यू आर स्टिल मिस्टर जॉन, यू आर स्टिल 65 ईयर ओल्ड, यू आर स्टिल फिलोसोफर, यू आर गोइंग टू शिकागो, बट सी योर बस इज गोइंग एंड यू आर मिस्ड इट। तीसरी बार आवाज आती है कि तुम्हारी बस तो अब गई क्योंकि तुमने डाउट किया। तो चौथी बात है, हमारा जो भाग्य है बाबा ने कहा ये प्रॉपर्टी है, और ये कैसी है? भरपूर प्रॉपर्टी है. दिस इज द फोर्थ पॉइंट फ्रॉम टुडेज मुरली. अगली पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, दूर से आत्माओं को यह अनुभव हो कि भाग्य का सूर्य चमक रहा है. आत्माओं को क्या अनुभव हो दूर से? भाग्य का सूर्य चमक रहा है. जैसे पहले कहा, भाग्य को हमेशा कंपेयर किया गया, सूर्य है, सितारा है, कलम है, लकीर है, तिलक है, सुहाग है, द्वार है, चक्र है, भाग्य चक्र, भाग्य द्वार. तो यहां एक दूसरा कंपैरिजन है. शुरुआत बाबा ने की भाग्य लकीर है, यहां पर क्या कह रहे हैं? भाग्य सूर्य है, लाइक सन. सन क्या करता है? शाइन करता है. तो दूर से आत्माओं को लगे कि ये बहुत भाग्यशाली आत्मा है. किसी मुरली में बाबा ने मधुबन निवासियों से कहा था, दूसरे जब तुम्हें देखे तो उनको ये ना लगे ये कितने त्यागी है. क्या लगे उनको? भाग्यवान है. नहीं तो कहेंगे अरे रे 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 रे, तुम बाहर का भी नहीं खाते, अरे रे रे रे, वेरी बैड. कितना एंजॉयमेंट है लाइफ में, यू डोंट एंजॉय लाइफ. देयर इज सो मच एंजॉयमेंट इन मैरिज, मैरिड लाइफ. यू आर विदाउट मैरिज, अरे रे रे रे, वेरी वेरी बैड. लेट्स गो फॉर साइट सींग, नॉट साइट सींग, वेरी पुअर. डल लाइफ. संडे है आज, 8 बजे तक उठना सोना होता है. कितने बजे उठते हो संडे में? 4 बजे. ओहो, इतना त्याग. लोगों को ऐसा ना लगे कि हमने त्याग किया है. क्या लगे? ये बहुत भाग्यशाली. ऐसा अगर हम अपना त्याग ही दिखाते, यू ऑलवेज वेयर वाइट, अरे रे रे रे, सो ब्यूटीफुल क्लोथ्स. कितने क्लोथ्स है अच्छे अच्छे, कुछ भी नहीं. इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट कभी तो चलो, कुछ भी नहीं. वेरी वेरी पुअर. उनको ऐसा ना लगे, उनको हमारी खुशी दिखे. एक नया नया परिवार था, बीके बना, बीके. तो उनको शादी में जाना था, शादी में गए, न्यू बीके फैमिली. तो वहां पे रेस्टोरेंट में गए तो प्लेट सर्व की गई, और प्लेट में समोसा था. तो अब कुछ लोग जानते थे ये तो बीके बने, अब दे विल ईट और नॉट. तो वो जो व्यक्ति था मेन, उसने समोसा को, समोसा पता है ना, समोसा को तोड़ा और अंदर का आलू खाने लगा. तो उसको पूछा ये क्या है? उसने कहा हम बीके हैं, बाहर का नहीं खाते हम अंदर का खाते, बाहर का वी डोंट ईट. ओनली आलू. तो बाबा ने कहा दूर से दिखाई दे कि भाग्य का सूर्य चमक रहा है. यह अनुभव आत्माओं को, भाग्य का सूर्य चमक रहा हो. इसके लिए हमें अपनी धारणाओं से बहुत खुशी खुशी से धारणा करनी है. मर मर के जबरदस्ती वैसा नहीं है. हमारा जीवन मौजों का जीवन है, खुशी का जीवन है, आनंद का जीवन है. हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको ये जबरदस्ती करना पड़ रहा है, हमें खुशी है ये करते हुए. क्योंकि यहां जो मिल रहा है वो बहुत श्रेष्ठ है, संसार में जो मिलता है. आत्मा को खुशी चाहिए. जब जब संसार की कोई चीज भोगी जाती है तो ब्रेन से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, दे इंड्यूस हैप्पीनेस. द सेम केमिकल्स आर रिलीज्ड बाय मेडिटेशन. चॉकलेट खाने से जो खुशी मिलती है, वही खुशी चॉकलेट न खाके आत्मा अतीन्द्रिय सुख के द्वारा उससे 10 गुना खुशी प्राप्त कर सकती है. तो हमको छोड़ नहीं रहे, हमें मिला है. तो बाबा ने कहा भाग्य क्या है? सूर्य है. सूर्य के साथ कंपेयर किया, हम सूर्य जैसे दिखाई दे. सूर्य की तरह चमकते हुए दिखाई दे. एक ही मुरली में कितने कंपैरिजन्स हैं. इसलिए मुरली इज अ वेरी वेरी सटल, बहुत सूक्ष्म है. क्योंकि ये जो वाक्य है ये किसने बोले हैं? Who is he who is speaking? ये दिख रहे बहुत साधारण, पूरा कंटिन्यूअस स्पीच है ये कि ये है ये है ये है ये है, इसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है। ऐसा लगता है ये क्या है, परंतु इट्स वेरी डीप, एवरी लाइन इज डीप। इसके लिए इसकी स्टडी करनी है डेली। ये तो अव्यक्तवाणी है, दिस इज हाईली फिलोसॉफिकल, दिस इज पीएचडी लेवल, दिस इज पीएचडी लेवल। दिस इज लाइक वन लाइन इज अ थीसिस टॉपिक, एवरी लाइन इज अ टॉपिक फॉर थीसिस। हमने गए फटाफट फटाफट फटाफट, ओ सॉरी, फटाफट फटाफट पढ़ लिया, फटाफट फटाफट लिख लिया, डायरी बंद, चलो आज का काम कारोबार डन, सेटिस्फैक्शन, एवरीबडी सॉ आई वॉज इन द क्लास, आई एम सेफ, नाउ नोबडी कैन से एनीथिंग टू मी। किसी की मजाल जो मुझे कुछ कहे, हम ज्ञान में हैं और हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मुरली रेगुलर, सब ठीक है हमारा, पर क्या है वो नहीं पता बस, डोंट आस्क। मुरली वॉज वेरी गुड, बहन जी ने बहुत अच्छे से पढ़ी, सारी पॉइंट्स डायरी में लिखी है, क्या लिखा है डोंट आस्क। तो फिफ्थ इज सूर्य, सिक्स्थ पॉइंट पर्सनैलिटी। बाबा ने कहा यह जो भाग्य है तुम्हारी रूहानी पर्सनैलिटी है। भाग्य क्या है, पहले बताया था, फोर्थ प्रॉपर्टी, नाउ पर्सनैलिटी। भाग्य पर्सनैलिटी है, नोबडी टॉट दिस बिफोर, तुम्हारी रूहानी पर्सनैलिटी है। ये देखकर लोगों को लगे कि इनको कुछ मिला है, इनको कुछ पाया है, ये अलौकिक है, ये न्यारे है, ये अल्लाह लोक है, इनके पास कुछ तो है, ऐसा उनको अनुभव हो। नेक्स्ट पॉइंट दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि। दृष्टि क्या करे हमारी, कुछ दिन पहले एक वरदान था, उसमें था कि तुम्हारी दृष्टि चाहे कोई कितनी भी काली, कोयले जैसी काली आत्मा, जब तुम उसको दृष्टि दो तो क्या हो जाए, उसका कालापन कम हो जाए। हाउ प्योर दिस शुड बी। मुरलियों में आता है अंग अंग क्रिमिनल है, सबसे ज्यादा क्रिमिनल है आंखें, आंखों को रूहानी बनाना है, आंखों को स्पिरिचुअल आईज बनाना है। तो ये भाग्य में एक निशानी है दृष्टि, हमारी दृष्टि से आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव हो। बाबा ने कभी मुरली में कहा है, जब तुम एक दूसरे को दृष्टि देते हो तो एक दूसरे को करंट देते हो, जब तुम किसी को शरीर देखते हो तो पाप करते हो, और जब किसी को आत्मा देखते हो तो पुण्य करते हो। ये डेफिनेशन है पाप और पुण्य की। दो दिन पहले मुरली में था, कोई स्त्री भी सामने है, तुम्हें देखने की इच्छा नहीं है। तीन दिन पहले मुरली में था, शरीर को देखने की इच्छा ही नहीं है। क्या है इस शरीर में, क्या देखे इसको, दृष्टि को रूहानी बना दे। उसके बाद में एट्थ पॉइंट, तुम्हें देख देख कर, तुम्हारे भाग्य को देख देख कर आत्माएं हर्षित हो। बार बार तुमको देखे तो क्या हो, आत्माएं हर्षित हो, खुश हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट नाइन्थ, वृत्ति, तुम्हारी वृत्ति से क्या हो, वायुमंडल बदले, आत्माओं को अनुभव हो कि यहां इस वायुमंडल में कुछ प्राप्त हो रहा है। वृत्ति इज वेरी वेरी सटल, बहुत सूक्ष्म है वृत्ति। अर्थात वृत्ति को कैसे डिफाइन करेंगे, वृत्ति को डिफाइन करने के लिए समझो ये एक तालाब है, तालाब में पत्थर डालो क्या होगा, रिपल्स। ये जो रिपल्स है वर्तुलाकार सर्कुलर इनको कहते हैं वृत्ति. दिस इज माइंड लेक ऑफ माइंड जहां पे बहुत सारे विचार है बाहर से कुछ आके गिरता है और प्रकंपन क्रिएट करता है. रिपल्स दोज रिपल्स मॉडिफिकेशन ऑफ द चित्ता आर नोन एज वृत्तीज. शास्त्रों ने भी वृत्ति का वर्णन किया है, बाबा ने भी वृत्ति कहा है. इन सिंपल लैंग्वेज एटीट्यूड पर्सपेक्टिव्स वृत्ति. तो जो हम सोच रहे दैट क्रिएट्स वृत्ति रिपल्स एंड दीज रिपल्स क्रिएट वायुमंडल वातावरण. तो ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया और हो गया, कोई विकार का संकल्प आया और छोड़ दिया, बट दैट हैज क्रिएटेड वाइब्रेशंस. वाइब्रेशंस आर बहुत सटल. इसके लिए कहा बाबा ने तुम्हारे एक शब्द में 100 शब्दों का वाइब्रेशंस हो. इसी मुरली में है. आगे न्यू वर्ष में क्या कहा, तुम्हारे वाणी एक शब्द बोलो और वाइब्रेशन 100 शब्दों का फैलाओ तब असर होता है, तब असर होता है. सो आवर वाइब्रेशन शुड बी वेरी पावरफुल. फॉर दैट योर स्टेज शुड बी पावरफुल. क्या बोल रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है. What is important is stage. And then 10th point. आत्माओं को दूर से अनुभव हो जैसे कोई कुआ पानी के, जैसे कोई कुआ प्यास बुझाने हमारे पास आ रहा है. कौन आ रहा है पास में, कोई कुआ आ रहा है. उसमें तीन और दो तीन बातें कही ना, उम्मीदवार है उनको उम्मीद जग जाए, दिया जग जाए, अप्राप्ति को प्राप्ति का अनुभव हो जाए, जिसके पास संपत्ति नहीं है धन है उसे अनुभव हो जाए धन मिल रहा है. तो हमको अपने अंदर ज्ञान का धन बन रहा है, अनुभव का धन भरना है, अध्यात्म का धन भरना है. टेंथ पॉइंट. फिर बाबा ने कुछ चेकिंग की बातें दी है यहां पर. अब अपने आप को चेक करो कि ये जो भाग्य की विशेषताएं मैंने कितनी धारण की, कितनी समझी, कितनी अपने अंदर ली. भोले नहीं बन जाओ, भोले तो बहुत बने, भाग्य को भी भूले, बाप को भी भूले. ऐसे भोले ही बाबा को पसंद है, परंतु अब भूलना नहीं है. 11th पॉइंट. बाबा ने कहा संसार की जन्म पत्रिया देख लो, विश्व की साइंस, जहां से हमने क्लास की शुरुआत की थी, साइंस वालों की जो ज्ञान है उससे भी कई गुना अधिक प्राप्ति तुम्हारी है. शास्त्रों वालों का जो ज्ञान है उससे भी कई गुना प्राप्ति तुम्हारी है. और तीसरा, कोई के पास धन बहुत है उससे भी ज्यादा भाग्य तुम्हारा है. तो संसार की जितनी कुंडलियां होरोस्कोप्स है, जन्म पत्रिया है, उन सब में सबसे अधिक भाग्यशाली तुम हो. यदि भगवान कहे सारे विश्व में हाथ उठाओ जिसका भाग्य सबसे ज्यादा है, तो हम क्या कहे कि बाबा मेरा हाथ सबसे ऊंचा है क्योंकि मेरा भाग्य सबसे ज्यादा है, हमारा हाथ सबसे अधिक ऊंचा उठे. दिस इज 11th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट जो मुरली की एंड है. मुरली का मधुबन निवासियों से मुलाकात नहीं, जहां पर बाबा ने कहा बाप समान मास्टर नॉलेजफुल और पावरफुल बनो. ये हमारा भाग्य की निशानी है. क्या करो, बाबा के समान क्या बनो, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पावरफुल बनो. और लास्ट में एक शब्द है ये वाला, समझा. समझा क्या, इतनी मुरली चली फिर भगवान पूछ रहा है समझा, मतलब ही हैज डाउट कि ये जो कुछ मैंने बोला किसको कुछ समझा, नहीं तो ऐसे कुछ क्यों बोलेगा. ही इज टॉन्टिंग हियर बाय द वर्ड समझा क्या, मतलब कुछ भी नहीं समझा. इसका मतलब किसी को कुछ भी नहीं समझा है, ऐसा उसको शायद थोड़ा डाउट है अंदर. इसके लिए हर अव्यक्त वाणी में क्या शब्द आता है, मुरली पूरी होती है अच्छा से पहले, समझा क्या कुछ, कुछ पल्ले पड़ा, कुछ बैठा क्या बुद्धि में, घुसा क्या अंदर कुछ, और छोड़ देता है बस आगे अच्छा. सो देर आर 12 पॉइंट्स टोटल. सो फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज, कोई भी जब मुरली पढ़ो डिवाइड इट इनटू पॉइंट्स. मुरली अंडरस्टैंडिंग की एक विधि है, क्या करो उसको पॉइंट्स में टुकड़े टुकड़े कर दो, पार्टीशन. नहीं तो एक कंटिन्यूअस स्पीच यू कैन नॉट रिमेंबर, यू कांट रिमेंबर. टुकड़े टुकड़े कर दो उसको और फिर उस टुकड़े के ऊपर अगला चिंतन करो. तो सारा दिन इसमें बिजी रहना है, नहीं तो बुद्धि संसार में हजार चीजें है, सब चीजों में जाती रहेगी, फिर इसका चिंतन कब होगा. और माइंड नीचे आ जाता है, बॉडी कॉन्शियसनेस, वाइसेस, अट्रैक्शंस, डिस्टॉर्शंस, संसार में खींचा जाता है, खालीपन, अकेलापन, बेचैनी, लोनलीनेस, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उदासी, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, डिप्रेशन. कीप द माइंड बिजी इन चर्निंग नॉलेज. फिर बाबा ने मधुबन निवासियों से मुलाकात की, क्या क्या कहा मधुबन निवासियों को पहले आप बताओ फिर हम बताएंगे. सबसे पहले तो नाउ डिवाइड दिस अगेन, दिस मधुबन निवासी, देर आर टू पैराग्राफ्स, नाउ मेक इट पार्टीशन. फर्स्ट पॉइंट इज दो स्पेशलिटीज मधुबन निवासियों की, सेकेंड पॉइंट इज लाइट हाउस, माइट हाउस, थर्ड पॉइंट इज स्टेज, फोर्थ पॉइंट इज मधुरता, फिफ्थ पॉइंट इज वैराग, एंड सिक्स्थ पॉइंट इज न्यू ईयर. तो दिस इज डिवाइड इन टू सिक्स पार्ट्स. पहली बात, मधुबन निवासियों से क्या कहा बाबा ने, तुम में दो विशेषताएं, कौन कौन सी, मधु और वन. मधु अर्थात स्वीटनेस, मधुरता, और दूसरा है वैराग, बेहद का वैराग. ये बैलेंस रखो, कितना अच्छा बैलेंस है ये, एक तरफ बहुत मीठा मिठास है और दूसरी तरफ संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है सब खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, ऐसा वैराग है संसार की वस्तुओं के प्रति. राग ईश्वर, और ईश्वर ने जो बातें बताई है वो, और वैराग विषय और संसार की सारी बातें. तो मधुबन निवासी अर्थात ये दो बातें. दूसरा बाबा ने कहा, मधुबन निवासी अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस, जो कुछ तुम यहां करोगे वो सब विश्व में फैलेगा. अब हम मधुबन में नहीं है तो ये समझना यही मधुबन है, ये सेंटर भी मधुबन ही है. मधुबन डजंट हैव जियोग्राफिकल डेफिनेशन की वो खाली मधुबन है, ये माउंट अबू, ये राजस्थान, ये मधुबन, हर वो स्थान जहां मुरली चलाई जाती है मधुबन है, हर वो स्थान जहां भगवान की याद है मधुबन है, हर वो स्थान जहां बाबा की सेवाएं हो रही है मधुबन है, हर वो स्थान जहां ब्राह्मण आत्माएं धारणाएं कर चल रही है मधुबन है. मधुबन कोई भौगोलिक व्यवस्था नहीं है, जियोग्राफिकल. हर वो मन जहां पर पवित्रता है, हर वो स्थान जहां पर अखंड ब्रह्मचर्य है मधुबन है. तो हम मधुबन में ही हैं, ये समझना ही. यहां जो कुछ होगा वो विश्व में फैलेगा, यहां जो कुछ होगा पूरे मस्कत में फैलेगा. इस स्थान पर जो होगा, और यहां पर स्थान बनाने वाला, ये स्थान अर्थात ये भी नहीं है, दीवारें स्थान है. हम मधुबन है, वी आर द यज्ञ, मैं ही यज्ञ हूं, ये अनुभव करना है, ये धारणा करनी है. मेरे जो मन में उठ रहा है वो ही मधुबन है. तो बाबा ने कहा मधुबन लाइट हाउस, माइट हाउस, तुम जो सोचोगे वो विश्व में फैलेगा, चाहे ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो सब प्रभावित होंगे, जो यहां होगा वो वहां होगा. इसके लिए एक दूसरी बात है, यहां का वायुमंडल, ये जो सेंटर का वायुमंडल भी, हर एक ये समझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको पावरफुल बनाना, इसको शक्तिशाली बनाना है. कैसे बनाएंगे, विचारों से, संकल्प से, वाइब्रेशन से, वृत्ति से, दृष्टि से, सटल काम करना है इस पर. उसके बाद में ये हो गया लाइट हाउस मॉडल. फिर बताया स्टेज, उसकी थोड़ी सी चर्चा हमने कर ली. स्टेज पर जितने लोग होते हैं सब अपना मेकअप वगैरह ठीक रखते हैं. नोबडी वांट्स कि मैं कैमरा के सामने जाऊं और कुछ गड़बड़ दिखे उसमें, नहीं तो लोग पूछेंगे अरे तुमने क्या मेकअप कम किया था, तुम्हारे बाल इधर आ रहे थे. होल वर्ल्ड इज वॉचिंग. अभी भी हम स्टेज पर है तो स्टेज, उसके बाद में बोल, फाइव स्पेशलिटीज शब्दों की, फाइव स्पेशलिटी मोती, प्रेरणा, टेप, वाइब्रेशंस एंड महान, फाइव. उसके बाद में वैराग, बाबा ने कहा वैराग सारे विश्व में फैलाओ, वेहद के वैरागी हो. एंड लास्ट पॉइंट न्यू ईयर. न्यू ईयर के लिए कुछ ऐसा संकल्प करो और उसको बाबा के सामने रिपीट करो जब तक पक्का ना हो जाए. रिवाइज करो, कब तक रिवाइज करो, जब तक इतनी बार रिपीट करो, रिवाइज करो जब तक वो पक्का ना हो जाए. तो कोई भी नई आदत, न्यू हैबिट, न्यू संस्कार के लिए पहले होता है संकल्प एंड देन रिपीटिशन, बार बार रिवाइज, देन विजुअलाइजेशन, अफॉर्मेशन, प्लानिंग, ऑल दिस थिंग्स जरूरी है कोई भी संकल्प के लिए, उसको नया करने के लिए. और लास्ट में न्यू ईयर प्लान बताया बाबा ने. वो मधुबन निवासियों से मुलाकात नहीं है, उसमें कहा कुछ ऐसा ग्रुप बनाओ, कुछ ऐसी सेवा करो कि जो प्रैक्टिकल हो, जो लोगों को दिखाई दे कि पूछे ज्ञान क्या है, योग क्या है, याद क्या है, धारणा क्या है, तुम्हारी क्या है, क्या ये उसका प्रैक्टिकल प्रभाव पड़े. तो ये ऐसी मुरली थी. तो सभी फिर से अलर्ट होके बैठेंगे, एक मिनट योग और उसके बाद फिर टी ब्रेक होगा. मैं आत्मा इस संसार की सबसे अधिक भाग्यशाली आत्मा हूं. मेरे भाग्य की लकीर श्रेष्ठ है, अविनाशी है. ये भाग्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है. इसी रूहानी नशे में मैं हूं. मेरे भाग्य की झलक और फलक आत्माओं को आकर्षित कर रही है. भाग्य मेरी प्रॉपर्टी है. मैं भाग्य का सूर्य हूं. ये भाग्य मेरी पर्सनैलिटी है, रूहानी पर्सनैलिटी. मेरी दृष्टि से आत्माओं का भाग्य जग रहा है. आत्माएं मुझे देख देख कर हर्षित हो रही है. मेरी वृत्ति वायुमंडल को बदल रही है. संसार की प्यासी आत्माएं अनुभव कर रही है जैसे कोई चैतन्य कुआ उनके पास आ रहा है. संसार की सभी जन्म पत्रियों में मेरा भाग्य सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए मैं संकल्प करता हूं, बाप समान, मास्टर पावरफुल, मास्टर नॉलेजफुल बनने का. दो विशेषताओं से भरपूर, मधुरता और वैराग. लाइट हाउस, माइट हाउस, विश्व की स्टेज पर मैं. दृढ़ संकल्प, बाबा के सामने बार बार रिवाइज, रिपीट, पक्का. सेवाओं में नवीनता. मैं विश्व की सर्वश्रेष्ठ
अल्लाह लोक
अनोखी अधिकारी सबसे अधिक भाग्यशाली आत्मा